ओम शांति। वैसे तो परामादरणीय भाई जी ने काफी बातें हम सबके सामने रखकर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे ही दिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे जानना और समझना आवश्यक है। हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विद्यालय में सूर्य भाई जी जैसे विशेष आत्मा है, क्योंकि जब भी हमारे मन में कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं, उलझने आती है, जब सामने अंधकार नजर आता है तो आंखों के सामने बाबा तो आता है लेकिन साथ में सूर्य भाई जी भी आते हैं। कोई तो है हमारे प्रश्नों का जवाब।
लोग हंसा करते हैं
जी,
सॉरी कि जो आत्माएं भटक रही हैं ना
जी,
उनको भी समस्या होती है तो सोचते हैं सूरज भाई के पास चलो आती हैं मेरे पास।
आप सबको मालूम होना चाहिए कई इविल सोल भी भाई जी को फोन करते हैं और फोन करके पूछते हैं मैं मुझे मुक्ति कैसे मिले। ये इसकी चर्चा कम होती है, जैसे भाई जी ने बताया कैमरा सामने है, आप लोग और पीछे से भी बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। तो आज के कुछ प्रश्न आप सबके जो लिए हैं उससे संबंधित हैं, कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें जो लोगों के आए हैं वो सब पूछा जाएगा। भाई जी एक प्रश्न है कि
थोड़ा फैन चला देना भाई मेरा है, पीछे वाले फैन चला दो।
किसी ने पूछा है भाई जी कि मैं ज्ञान में 2 साल से हूं और अव्यक्त बाप दादा से दादी के माध्यम से बाबा मिलन नहीं हो पाया, तो क्या मैं सत्युग में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती?
बिल्कुल शुरू में ही आ जाएंगे, चिंता न करो। क्योंकि बाबा से आप नहीं मिल सके लेकिन बाबा तो आपसे रोज मिलता है
जी,
इसलिए आप सत्युग के शुरू में ही आ जाएंगे, डोंट वरी
जी। यज्ञ सेवा किस लिए की जाती है, नाम के लिए या पद पोजीशन के लिए?
दोनों के लिए नहीं, परम सुख पाने के लिए, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। जो नाम के लिए सेवा करते हैं उनका तो वहीं कैंसिल हो जाता है भाग्य, नाम मिल जाता है, भाग्य नहीं मिलता। जो पद पोजीशन पाने का लक्ष्य रखते हैं उनको भी कुछ ज्यादा नहीं मिलता। संगम पर भी पद चाहते हैं ना, कहीं मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं चेयरमैन बन जाऊं। संगम युग पर महत्व तो उनका ही है, सब सीख लेंगे, नयों को ये बात आती नहीं है। जो निष्काम भाव से और समर्पण भाव से सेवा करते हैं, दोनों गीता में चर्चित हैं, बहुत चर्चित, और बाबा के ज्ञान में भी बहुत इंपॉर्टेंट धारणाएं हैं। निष्काम भाव, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, और जो सेवा की उसको बाबा को अर्पित कर दें, ओम शांति, कुछ नहीं। यह सेवा का दिव्य स्वरूप।
फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए?
फर्स्ट डिवीजन का अर्थ होता है विजय माला में आना, 108 की माला में आना। और कोई ये न सोचे कि हम लेट आए हैं तो नहीं आ सकते। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और फिर सुन लें, बाबा ने कहा था कि अंत तक भी 2-3 सीट खाली रखी जाती हैं। कोई तेज दौड़कर कुर्सी पर बैठना चाहे तो सीट खाली मिलेगी। इसलिए फर्स्ट डिवीजन में आने वाले 8 घंटा योग करेंगे। जब 8 घंटे की बात कही जाती है तो बैठकर नहीं, अंडरलाइन कर दें, बैठकर नहीं, नींद छोड़कर नहीं। 3 मास में ही, मैं ये बात अब जनरल कह देना चाहता हूं, सारा संसार सुने, जो लोग नींद छोड़कर जबरदस्ती योग करते हैं, हठपूर्वक योग करते हैं। आजकल समस्या बढ़ती जा रही है, ब्रेन में खिंचाव, फिर नींद नहीं आती, योग नहीं लगता, खुशी नहीं होती। इसलिए कोई सोचे 8 घंटे बैठना है मुझे, ये गलती कोई ना कर दे, मैं साफ बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती है। कई कुमारों ने अति उमंग में आकर कर लिया, बैक खत्म हो गई, अब डॉक्टर ने कह दिया जीवन भर हार्ड बेड पे लेटना है आपको, गद्दे पे भी नहीं, हार्ड बेड पे एक चादर बिछा के लेटे रहो जीवन भर, योग भी बदनाम हुआ। तो नींद भी कम नहीं करनी है, कोई हम में से ही बता देता है 2 बजे उठकर योग करने वाले ही महान योगी हैं। अब माता जी 11 बजे 11:30 सोई है, 2 बजे जबरदस्ती उठ रही है, कुछ सो रही है, कुछ योग कर रही है, पहुंच गई डॉक्टर के पास, दिमाग की ब्रेन खींच रही है, वो ब्रेन की जो नसें हैं खींच रही हैं, नींद नहीं आती। डॉक्टर को बताया, छोटी आयु की बहन है, शायद यहीं बैठी हो। पूछा डॉक्टर ने क्या हुआ, कि मैं तो मेडिटेशन करती हूं। कितना अच्छा उत्तर दिया डॉक्टर ने, कहा तुम्हारी उम्र मेडिटेशन करने की है, थोड़ी 40 साल की तो हो जाओ, अभी 25-27 साल की है, योग भी बदनाम, गया सब कुछ। ब्रेन एक बार खिंच जाए उसको ठीक करना, डॉक्टरों का तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। 8 घंटे कर्म में अच्छे अभ्यास करने का प्लान बनाना, सभी ने सुन लिया होगा, जो मुझे सुनेंगे वो भी ध्यान दें, नींद रात को कम से कम 5 घंटे गहरी होनी चाहिए, 5:30 हो जाए तो और अच्छा, इससे कम नींद करके आप योग करेंगे तो जीवन भर पछताएंगे। सुन ले मेरी बात, बहुतों के अनुभव आ चुके हैं। दूसरा, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए प्योरिटी फर्स्ट क्लास। जो मनु शीर्षा द्वेष पर चिंतन, तेरा मेरा व्यर्थ गप सप, इनसे मुक्त है, उसकी ही शक्तियां केंद्रित होती हैं, वही फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं। तीसरी चीज, धारणाएं लिख लें कुछ, संतुष्टता, सरलता, सभी के लिए प्रेम और सुभावनाएं, निरहंकारिता, मैं और मेरेपन का त्याग करते चलें, वो धीरे धीरे होगा। ऐसी आत्माएं जो ये तीनों क्वालिटी अपनाएंगी फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगी।
बाबा कहते हैं अब दौड़ो नहीं, उड़ो। उड़ने का क्या भाव है?
उड़ना कोई शरीर से नहीं है, कहीं आप सोचो पंख लगा लें और उड़ने की कोशिश करें। पढ़ा करते थे जब तो बताया किसी ने, सोचा मोम के पंख बना लिए दो, थोड़ा सा उड़ा, जैसे ऊपर गया गर्मी बढ़ी, पंख पिघल गए, फिर क्या हुआ, जीवन का अंत हो गया। उड़ने का अर्थ है तीव्र पुरुषार्थ करना, जैसे पहले चढ़ती कला होती थी, फिर बाबा ने कहा जंप लगाओ, हाई जंप लगाओ, मतलब और तेज, जल्दी जल्दी विघ्नों को परिस्थितियों को पार करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, और तेज चलो। फिर कहा उड़ती कला, माना बहुत तेज पुरुषार्थ, जो करना है जल्दी जल्दी करना है, लेकिन जल्दी जल्दी करने को टेंशन नहीं बना देना है, अटेंशन दो इस बात पे। कई लोग जल्दी करने को टेंशन बना देते हैं, माताएं भी गड़बड़ करती हैं, योग करना है मुझे, काम नहीं करना, छोड़ो मुझे, बैठ गई योग में, बच्चे देख रहे बेचारे, मम्मी ध्यान लगा के बैठी है, पता नहीं क्या कर रही है अंदर में। रिलैक्स हो जाओ, बहुत सरल, सहज जितना बनेंगे उतना ही तो उड़ेंगे ना, हल्के होंगे तो, मन को हल्का कर दो तो पुरुषार्थ तेज होगा। यही बातें करनी, बहुत अच्छे स्वमान के अभ्यास, पांच स्वरूपों के अभ्यास। अगर आपको बहुत तेज पुरुषार्थ करना है तो ट्रैफिक कंट्रोल रख लो अपने घरों में, एक मिनट में पांच स्वरूपों का अभ्यास कर जाओ, तीन मिनट में कर जाओ, कभी एक मिनट में संसार को सकास दे दो, कभी एक मिनट में शरीरीपन का अभ्यास कर लो, कभी एक मिनट में बाबा से कुछ बातें कर लो। ये छोटी छोटी विधियां जो बहुत सुंदर हैं, ये जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, कई बार तो एक एक मिनट का बजता है, 10-12 बार तो बजता होगा, और 5-7 बार 3 मिनट का। इसमें ही यदि अच्छा पुरुषार्थ करने लगे तो तीव्र गति, फ्लाइंग स्टेज उड़ती कला हो जाएगी।
जी भाई जी, एक प्रश्न है भाई जी, जब आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है तो ज्ञान मार्ग में भी श्राद्ध क्यों मनाया जाता है?
श्रद्धा है ये, श्राद्ध शब्द का निर्माण हुआ है श्रद्धा से, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। जैसे भक्ति क्यों हुई देवताओं की शुरू, हम 2 युग तक देवता थे तो देवता, द्वापर से देवता हमारे पूर्वज हो गए थे, हम पुनर्जन्म लेते आए तो हम अपने पूर्वजों को सम्मान दे रहे थे, तो फिर हमने मंदिर बना दिया। जैसे घरों में बच्चे अपने माँ बाप का फोटो रख लेते हैं ना, फिर माला भी चढ़ा देते हैं, फिर उनके बच्चे उनका रख लेंगे, ऐसे जो परंपरा चली तो भक्ति शुरू हो गई। तो ऐसे ही हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, श्रद्धा रखते हैं उन्होंने कि उन्होंने हमें जन्म दिया, संपत्ति दी, संस्कार दिए, और अगर उनके लिए भोग आदि भी लगाया जाता है, कुछ पुण्य कर्म भी किए जाते हैं, मान लो आप ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं सबको, तो उसका जो सुख संपुण्य है, क्योंकि वो उनके नाम से किया गया है, उसका फल उनको प्राप्त हो जाएगा।
जी भाई, शुरू शुरू में बहुत उमंग उत्साह से ज्ञान में चला, लगता था मैं बाबा को प्रत्यक्ष करके ही रहूंगा, अब वो संकल्प आता नहीं, पता नहीं क्या हो गया।
संकल्प को फिर से वापस जोड़ लो अपने मन में, संकल्प इसलिए नहीं आता, इस पर एक मुरली है बाबा की बहुत अच्छी, एक ही बार मुरली चली है, 5 कारण बताए थे बाबा ने इसके, बिल्कुल यही प्रश्न लेकर बाबा ने मुरली चलाई थी। हम आते हैं तो केवल अपने को देखते हैं, वाह भगवान मिल गया, अब तो वही करना है जो वो कहता है। थोड़े आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे तो कर ही नहीं रहे, हमें क्या जरूरत पड़ी खींचातान की, ढीले हुए आधे कमरे में सोए हुए बाबा ने एक बार मुरली चलाई, मधुबन वालों से मिल रहे थे, 5-5 रहते थे हम एक कमरे में, कि एक उठता है रजाई से मुंह निकाल के देखता है, बाकी 4 सोए हुए, वो भी सो जाता है। बाबा हंसी मजाक बहुत करते, घरेलू मीटिंग होती थी ना हम लोगों की, ऐसी ऑफिशियल नहीं होती थी, तो जब हम दूसरों को देखकर ढीले हो जाते हैं, जब परचिंतन में चले जाते हैं, फिर यज्ञ के बारे में उल्टा सुलटा सोचने लगते हैं, ये ऐसे कर रहे वो ऐसे कर रहे हैं, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो जो नशा और उमंग है वो डाउन हो जाता है। ये जो हमारे उमंग की बातें हैं, अनुभवों की बातें हैं, ये बड़ी ही सूक्ष्म है। मैं एक अनुभव अपना कई बार सुनाया है, फिर सुन लो, याद आ गया। 18 जनवरी का दिन था, कुछ साल पहले, 10 साल हुए होंगे, तो 18 जनवरी हम लोगों के लिए बहुत सुंदर समय होता है। तो मैं नीचे किचन में बैठा था, किचन में जब मैं बैठता हूं तो मेरे लिए वो सबसे सुंदर समय होता है, क्योंकि मुझे कुछ करना तो नहीं होता, मैं बाबा का आह्वान कर लेता हूं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब हमारे यहाँ जिम्मेदार हैं, कोई टेंशन नहीं है, चाहे नीचे 30,000 आ गए हों, फर्स्ट क्लास काम चलता है। तो मैं बैठा था, बहुत आनंद, बाबा का आह्वान किया हुआ था, सुख भरी फीलिंग हो रही थी। एक पुराना भाई आ गया, अब आया है तो मैंने कुर्सी पड़ी थी, मैंने कहा बैठ जाओ भाई, वो बैठ गया, और बैठते ही उसने कथा शुरू कर दी, फलाना मेरे साथ ऐसा करता है, उसने मुझे तंग किया हुआ है, आप कुछ करो भाई जी। अब मेरे को कोई रुचि नहीं थी इन बातों में, लेकिन दो मिनट उसकी बात सुननी तो पड़ी ना। सुनने से ही परमानंद खो गया। मैं सोचने लगा, मुझे तो रुचि भी नहीं थी ना, मैं ध्यान से सुन रहा था, केवल समय गया दो मिनट, उससे ही परम आनंद खो गया। और वो तब लौटा जब मैं शाम को फिर 3 बजे उठा और क्लास करानी होती थी, 3 बजे उठ जाता था, वो तब लौटा वापस। तो मैं सोचने लगा मेरा इतनी सी गलती से कि मैंने गलती कर दी, उसको बैठा लिया। मैं तो इसलिए बैठा है, तभी मेरे से पुराना है, बुजुर्ग है, और जो सारा दिन परचिंतन में रहते हैं, दूसरों को ही देखते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। समझ गए ना क्यों कह रहा हूं? बहुत बच के रहना है व्यर्थ से। तो ये सुख अपरंपार सुख सदा रहेगा। और फिर से उमंग ले लो, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अभी प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, मार्जिन फुल है, तेज पुरुषार्थ करो और बाबा का नाम रोशन करो अपने जीवन से।
जी भाई जी, हम भाई जी को देखते हैं शुरू से स्वयं को व्यर्थ से सदैव मुक्त रखे हैं, यही भाई जी की उन्नति का बहुत बड़ा एक कारण है। और जब भी मिलते हैं तो इस बात को हमेशा अंडरलाइन कराते हैं कि अगर किसी को अच्छी उन्नति करनी है, पुरुषार्थ तेज करना है, तो व्यर्थ से सदैव मुक्त रखें। एक प्रश्न है भाई जी, घर में बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, कैसे मोबाइल की लत से छुड़ाएं?
अब साइंस ने मोबाइल दिए हैं, खरीद के भी आपने दिए हैं, माताएं अपने छोटे बच्चों को ही दे देते हैं, मेरी जान न खाओ, अब खेलते रहो तुम इस पे, तो बीज तो आपने बोए हैं। क्या कहते हैं भाई, ठीक कहा मैंने या नहीं? माताएं बड़ी खुश होती हैं, मेरा बच्चा छोटा सा 5 साल का मोबाइल में एक्सपर्ट हो गया है। छोटे बच्चे ज्यादा एक्सपर्ट हैं,
बड़ों को माँ को सिखाते हैं भाई।
बड़ों को कहोगे फोटो खींच दो तो बड़े कहेंगे यार हमसे तो आता नहीं, हमसे भी नहीं आता। और छोटे बच्चे फटाफट। अब इसके लिए आप आधा घंटा रोज योगदान कर दो, उन्हें अच्छी बात सिखाओ, क्योंकि ये व्यसन है और ये अनेक मानसिक रोगों को जन्म दे रहा है। बहुत सारे युवक जो डिप्रेशन का और निगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, जो पढ़ाई से बेमुख हो गए हैं, एकाग्रता नहीं होती, उसका कारण ये मोबाइल ही है। सुसाइड कर रहे हैं कई बच्चे, आप सुनते होंगे, इसलिए थोड़ा उन्हें अच्छी अच्छी बात कहते भी नहीं, डांटेंगे नहीं, डांटने से बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्यार से, जैसे बाबा ने हमें सुधारा, देखो बाबा ऐसा सुप्रीम टीचर है। मैं सोचा करता हूं बाबा जैसा टीचर तो दुनिया में हो भी नहीं सकता, भगवान है। हमें स्वमान दिए, हर अव्यक्त मूल्य की पहली लाइन सुनो आप, आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। देख ही नहीं रहे, हर्षित हो रहे हैं। नशा चढ़ जाता था, वाह मेरा भाग्य, अच्छी अच्छी बातें नशा चढ़ा के फिर कहता था, बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जोर से बोलते हो, ऊपर तक भी आवाज आती है। तो लगता था ना भाई हमें अब सुधरना है। स्वमान दो, प्यार दो, फिर अच्छी बातें सिखाओ तो अवश्य सीख जाएंगे। आत्मिक दृष्टि और स्वमान यदि आपके पास होगा तो आपकी वाणी का प्रभाव बच्चों को बदल देगा।
कुछ रहस्ययुक्त प्रश्न है भाई, बहने भी इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। मम्मा काफी समय हो गए अव्यक्त हुए, बड़ी दादी जी को भी अव्यक्त हुए काफी समय हो गए, और भी हमारी वरिष्ठ दादियां जो कई वर्षों से अव्यक्त हो चुकी है, नया जन्म ले चुके हैं, क्या उन्हें इस जन्म में, जिस जन्म में अभी हैं, उन्हें यज्ञ की याद आती होगी?
नहीं। इसमें सभी को एक सूक्ष्म रहस्य जानना चाहिए कि आत्मा की संपूर्ण मेमोरी, स्मृतियां उसके ब्रेन से जुड़ी होती हैं। अब उनका ब्रेन बदल गया है तो मेमोरीज बदल गई हैं। किसी को भी याद नहीं आती। एक बाबा का संदेश सुनाता हूं, बहुत पहला, शायद रोहित भाई ने भी सुना होगा या नहीं। मामा का दिन था और मामा को भोग लगा और बाबा ने एक सुंदर बात कही कि मामा रोज सवेरे उठती है, वो संस्कार उनका पक्का है, और उनकी बुद्धि उस्यांत में बैठ जाती है और उनकी बुद्धि ऊपर की ओर खींचने लगती है। उन्हें पता नहीं योग क्या है, उन्हें अब योग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये इफेक्ट अवश्य रह जाते हैं, लेकिन यहां की कुछ स्मृति रहे वो नहीं रहती है।
जी भाई जी, एक प्रश्न है भाई जी। दादी प्रकाशमणि जी इतने बड़े विशाल संगठन की संचालिका रही, शक्ति सेना की सेनापति रही, वर्तमान समय वो लगभग 14 वर्ष का तेजस्वी ओजस्वी बालक है। कभी सफेद वस्त्र धारणी बहनों को देखकर रास्ते चलते पिछले जन्म की कुछ याद आती हो?
बिल्कुल, अट्रैक्शन होता होगा, निश्चित रूप से होता है। बाबा के झंडे के प्रति आकर्षण, सफेद वस्त्रधारियों को देखकर आकर्षण, लेकिन रामा में इन महान आत्माओं के गुप्त पार्ट हैं। तीन पार्ट विशेष रूप से चलेंगे, इसलिए वो गुप्त हैं। किसी का भी पुनर्जन्म तो गुप्त ही होता है ना। अगर वो प्रत्यक्ष हो जाए कि मेरा बच्चे ने शरीर छोड़ा, वहां जन्म लिया है, तो वहां पहुंच जाएगी, मेरा बच्चा मुझे दो। अभी जजों को मुश्किल हो जाएगी, नए नए कोर्ट बनाने पड़ेंगे इस फैसले के लिए किसका है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। तो ये पुनर्जन्म के रहस्य गुप्त ही रह जाते हैं। तीन बड़े काम इन सबको करने हैं, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। एक, भारत में प्रजातंत्र है और ये देवताओं के राज्य में बदल जाएगा, तो कुछ महान आत्माएं देवताओं को राज दिलाने का काम करेंगी। ये बहुत बड़ा काम होगा, सूक्ष्म होगा, इसके पीछे गतिविधि चालू होंगी थोड़े दिन के बाद। दूसरा, जो वैज्ञानिक हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उनको कई आत्माएं प्रेरित कर रही हैं। कईयों ने वैज्ञानिकों के घरों में जन्म लिया, राजनीतिज्ञों के घर में जन्म लिया, और उनकी उपस्थिति ही इन सबको सुंदर इंट्यूशंस प्रेरणाएं देती हैं। क्या वैज्ञानिक लोग सतयुग में जो भी विज्ञान के सुखों के साधन होंगे उनका यही निर्माण कर देंगे। पुष्पक विमान देवता थोड़ा ही बनाएंगे, यहीं के वैज्ञानिक बनाकर देकर जाएंगे, सारे सिद्धांत देकर जाएंगे। जैसे उड़ने वाली कार तो बन ही रही है, ये सब पुष्पक विमानों में बदल जाएंगे। फ्यूल भी ऐसा हो जाएगा कि तेल वेल डालने की जरूरत नहीं होगी, इंजन के पास रखा और अनंत काल तक फ्यूल का काम करेगा। तीसरी एडवांस पार्टी, देवताओं को जन्म देने वाले, उनके माँ बाप बनने वाले, जो जितनी महान आत्मा है, जैसे अश रत्नों को जन्म देने वाले विजय रतन, उनके बिल्कुल समीप, आठ रत्नों को जन्म देने वाले अगले 16 जो पहले मन के हैं, ऐसे ये एडवांस पार्टी की आत्माएं ये महान कार्य करेंगे।
जी भाई जी, एक प्रश्न है भाई जी। विनाश से पहले मम्मा या दादी जी यज्ञ का संचालन करने आ सकती है पुनः?
ये पॉसिबल है, दादी तो नहीं पर मम्मा आ सकती है, क्योंकि यज्ञ का जो अगला स्वरूप है वो बहुत महान है। जय जयकार भी होगी, दादी की जय जयकार यहाँ हो चुकी है बहुत ज्यादा। दादी को वर्ल्ड की दादी के रूप में लोगों ने रिकॉग्नाइज किया विदेशों में, UN ने, और बहुत सारा उनका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन मामा का रोल पूरा गुप्त रहा। मामा जगदम्बा है, भक्ति में उनकी ही सबसे ज्यादा पूजा है, शिव और श्री कृष्ण के बाद देवियों की ही पूजा सबसे ज्यादा है। वो निश्चित रूप से प्रकट होंगे, प्रख्यात होंगे, सारा संसार उनको मामा कहेगा और जय जयकार में वो मुख्य भूमिका निभाएंगी, और जब वो प्रत्यक्ष होंगी तो निश्चित रूप से यज्ञ की मालिक होंगी।
जी भाई जी, एक प्रश्न है भाई जी, सभी धर्मों को चार स्टेज से गुजरनी होती है, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। क्या हमारी इस विद्यालय को भी, इस यज्ञ को भी इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है?
नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो एक श्रेष्ठ धर्म की स्थापना है। अभी तो स्थापना हो रही है। कोई भी धर्म पिता जब धर्म की स्थापना करता है, मतलब क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म को बनाया, तो जब वो बना रहा था, उपदेश दे रहा था, संख्या बढ़ा रहा था, तब थोड़ा ही चारों स्टेज से गुजरना था, तो बाद में। तो अभी हमारी ये देवी देवता धर्म की स्थापना का समय है। किसी व्यक्ति की ऊंची कला और नीची कला हो सकती है, वो व्यक्तिगत बात है, यज्ञ की नहीं। क्योंकि यज्ञ को देखने वाले लोग भिन्न भिन्न आंखें रखते हैं। समझ ले मेरी बात को। इस यज्ञ में बहुत महान आत्माएं भी रहती हैं और निम्न कोटि की आत्माएं भी रहती हैं। ये बात कोई और नहीं बोलेगा। सर्वोच्च आत्माएं, जो बाप समान, जिनके कारण संसार ही स्थिर रहता है, जो इस सृष्टि के आधार हैं, वो भी यही हैं। वो हमारे सेंटरों में भी हैं, बहने भी हैं कई, बहुत महान, बहुत पवित्र, बहुत श्रेष्ठ योगी और निम्न कोटि की आत्माएं भी हैं। इसलिए यज्ञ को इन चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। यज्ञ को सूक्ष्म रूप से संभालने वाली आत्माएं यहां विद्यमान हैं, चाहे वो पदों पर हो या न हो। पद तो देखो ऐसी चीज है, किसी में कार्य करने और कराने की कला है, उसको वो जिम्मेदारी दे दी जाती है, और वो अच्छी बात है, वो सफलतापूर्वक उस कार्य का संचालन करते हैं। लेकिन महान योगी और महान पवित्र आत्माएं, उनका अपना ही महत्व होता है। वो इस संसार के आधार होते हैं, वो इस संसार के लिए जैसे मास्टर यान सूर्य होते हैं, लाइट देने वाले संसार को, वो यहां हैं।
जी भाई जी, प्रश्न तो बहुत है लेकिन छोटे छोटे दो प्रश्न हो रहे भाई जी। बहुत सारी कुमार कुमारियां ज्ञान में चलते चलते शादी क्यों कर लेते हैं?
क्योंकि दुनिया का आकर्षण, पवित्रता की धारणा में बहुत कमी, ज्ञान योग में ढीले। सीधी बात है, कुमार भी बैठे मुझे सुन रहे हैं, मैं सदा कहता हूं कुमार न तो अमृत वेले उठते, थोड़े से उठते हैं, बाकी सब निद्रा सुख लेते हैं। तो जब निद्रा सुख मिलेगा तो प्योरिटी तो ढीली होगी। और कन्याओं के लिए थोड़ा कठिन काम होता है, उनके माँ बाप भी उन्हें घर में रखना नहीं चाहते, कठिनाई होती है, कलयुग का समय है, और वो भी ढीली होती हैं। शादी कर लेती हैं, फिर कहती हैं कि कितना बड़ा गलती हमने कर दी, अब दुख ही दुख है, पति ऐसा मिला, सास ऐसी मिली है, सांस ही घोट दिया मेरा तो। मैं बहुत पछताती, मेरे पास आती है ना ऐसी कन्याओं के फोन। तो ये कारण है, अगर ज्ञान योग बहुत अच्छा हो तो फिर ये जीवन अति सुंदर जीवन है।
कर्म भोग से बहुत परेशान हूं, कैसे मुक्ति मिली?
कर्म योग, अगर आप बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, एक अभ्यास ये है। दूसरा अभ्यास, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। तीसरा अभ्यास, बाबा मेरा साथी है, मैं प्रकृति की मालिक हूं। तो कर्म भोग आपको सताएंगे नहीं, शरीर में पीड़ा होगी लेकिन आत्मा पीड़ित नहीं होगी, सहज पार हो जाएगा। आप अनुभव कर लें, कोई भी बीमारी आएगी, आएंगी तो जरूर, क्योंकि तमो प्रधान शरीर है, पानी बहुत पोल्यूटेड है, सब्जियां भोजन में रासायनिक खाद इतने डाले जा रहे हैं, वो बीमारियों के मुख्य कारण है। मुझे एक ने कहा फूल गोभी कभी नहीं खाना, मैंने कहा क्यों? कहा ऊपर ही छिड़काव होता है, फूल गोभी तो खुली रहती है, कहा सब अंदर चला जाता है, बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं इनसे, इसलिए बीमारियां तो अब इनको तो बदला नहीं जा सकता, खाना भी क्या कहां से खाएंगे, वही सब खाएंगे। फलों में तेज रहा नहीं, ताकत रही नहीं है, दवाइयां भी गड़बड़ वाली होती हैं, इसलिए बहुत अच्छा योग करेंगे और ये अभ्यास करेंगे तो बीमारियां आएंगी भी कम और आएंगी तो जाएंगी। ओम शांति।
एक बार पुनः भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिए, अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच रहे। एक भाई जी का बाबा की तरफ से और आप सब की तरफ से पुनः धन्यवाद। अभी हम सभी 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर आगे का आप लोगों का सेशन चलेगा।